हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा हॉस्पिटल में एडमिट जरूर थी, लेकिन अब उसकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बस उसे कुछ दिनों के लिए आराम करना था। कृषा के पास युग था, ऐसे में ध्रुव ने घर पर जाकर आराम करने का सोचा। जब उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे टॉर्चर एरिया में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो अच्छे से जानता था कि ये तारा की आवाज़ है। ऐसा नहीं था कि उसके रोने की आवाज़ आसपास खड़े गार्ड नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन वे नज़रें झुकाकर खड़े थे और ऐसे जता रहे थे जैसे वहाँ कुछ हो ही ना रहा हो। ध्रुव भी उसे इसी तरह इग्नोर करना चाहता था, लेकिन तारा के रोने की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक गए थे। ध्रुव ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ कसकर बंद कर लीं। ध्रुव का दिल यही कह रहा था कि वो तारा की मदद करे, लेकिन उसके दिमाग से वो सब नहीं निकल रहा था जब तारा ने कृषा को गोली मारी थी। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, छोड़ो मुझे क्या, मैं क्यों इसकी परवाह कर रहा हूँ। अगर मर रही है तो मरने दो, इसके मरने में ही मेरा फ़ायदा है। ध्रुव आगे कदम बढ़ाने को हुआ तभी तारा की फिर से दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे सुनने के बाद ध्रुव चाहकर भी अंदर नहीं जा पाया। वो गार्ड्स के पास पहुंचा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये क्या चल रहा है, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर चैन से सोने वाला हूँ, लेकिन इस तरह इसके चिल्लाने की आवाज़ आती रही तो सोना तो दूर की बात है, मैं ठीक से कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक गार्ड ने सिर झुकाया और फिर धीमी आवाज़ में कहा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हमें अंदर जाने से मना किया गया है और आप तो जानते हैं उसे चोट लगी है, ना हम उसे रोने से रोक सकते हैं और ना ही उसकी मदद कर सकते हैं। ये सब करने को तुम्हें किसी ने बोला भी नहीं है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो और हो सके तो उसके मुंह पर टेप लगा दो ताकि मुझे उसका चिल्लाना सुनाई ना दे, ध्रुव ने जवाब दिया। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन हमें अंदर जाने के लिए साफ मना किया है, चाहे कुछ भी हो जाए हम दरवाज़ा खोलकर अंदर नहीं जा सकते, गार्ड काफ़ी पोलाइटली बोला। अगर ध्रुव चाहता तो अंदर जाकर तारा की हालत देख सकता था या फिर उसका चिल्लाना बंद करने के लिए खुद उसके मुंह पर टेप लगा सकता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अंदर गया तो खुद को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, फिर उसे वहीं पर मरने दो, ध्रुव गुस्से में बोला और उसने अपने कान में एयरपॉड्स लगा लिए। ध्रुव को हर हाल में तारा को इग्नोर करना था। म्यूजिक प्ले करने के बाद वो अपने कमरे में आया। सबसे पहले उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। नहाकर फ्रेश होने तक उसका खाना आ चुका था। ध्रुव ने इस बीच एक बार भी एयरपॉड्स नहीं निकाले थे, हालांकि उसका ध्यान ना चाहते हुए भी तारा की तरफ जा रहा था। लगभग दो घंटे में ध्रुव सब कुछ करके फ्री हो चुका था। फिर वो बिस्तर पर आया और उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की। सोने से पहले उसे अपने कान से एयरपॉड्स निकालने ही पड़े। ध्रुव ने जैसे ही उन्हें निकाला उसने महसूस किया तारा के चिल्लाने और रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास पहुंचा तब भी बिल्कुल शांति थी। जब किसी को भी उसके कमरे में जाने से मना किया गया था फिर उसके रोने की आवाज़ अचानक बंद कैसे हो गई, कहीं सच में तो नहीं मर गई, ध्रुव खुद से बोला। हालांकि उसने जल्दबाजी में कह दिया था, लेकिन तारा के मरने का बोलते ही उसके दिल की धड़कन बेचैनी से धड़कने लगी थी। ध्रुव को किसी भी हाल में तारा के सामने नहीं जाना था, इसीलिए उसने वीर को कॉल किया। उसका कॉल रिसीव करते ही वीर जल्दी से बोला, अगर तुमने ये पूछने के लिए कॉल किया है कि तारा की सिक्योरिटी मुझे दी गई थी फिर भी मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, तो बता दूँ कि योग अंकल ने फिलहाल मुझे याशी के साथ उसकी सिक्योरिटी देखते हुए राणा नेंशन में रहने के लिए कहा है। पहले से ही बहाना तैयार कर रखा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ध्रुव ने आँखें छोटी करके पूछा। जिस तरह से वीर ने रटा रटाया जवाब दिया था उससे साफ था कि वो जानता था ध्रुव का कॉल ज़रूर आएगा। ऊपर से उसे क्या जवाब देना था ये भी उसने पहले से तैयार कर रखा था। हाँ, क्योंकि तुम्हारे घर जाने के बारे में मुझे पता चल गया था, सिक्योरिटी के लिए मैं नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है कि तुम इस बारे में पूछने वाले थे, वीर ने बहाना बनाया। ध्रुव के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी, वो सिर हिलाकर बोला, क्या लगता है वीर मलिक, मैं बेवकूफ़ हूँ, हम दोनों एक साथ पले बढ़े हैं, तुम कब क्या किसके इशारे पर बोलते हो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे इस तरह की रोमांटिक बातों की उम्मीद नहीं थी, खैर तुम लड़की होते तो मैं तुमसे प्यार कर सकता था, जब सब पता ही है तो जाकर उससे बात करो ना जिसे जवाब मिल सकता है, वीर ने हल्का हंसकर कहा। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया था। वीर ने उसकी इस हरकत पर मुंह बनाकर कहा, सड़ू कहीं जा। वीर से बात करने के बाद ध्रुव को कन्फर्म हो गया था कि उसे ऐसा करने के लिए युग ने ही कहा होगा। ध्रुव ने बिना सोचे समझे सीधा युग को कॉल किया। युग ने कॉल रिसीव किया और बोरियत भरे लहजे में कहा, बोलो इतनी रात को क्यों कॉल किया है, लेकिन आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा कि आप सो रहे थे जो मैंने आपकी नींद खराब कर दी। ठीक है, मुझे बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, आपने वीर को उस लड़की की सिक्योरिटी से क्यों हटाया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी होस्टेज के रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, जबकि जब मैं घर में आया था वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, आकर चेक कर लीजिए कि मर गई है या जिंदा है, ध्रुव ने काफ़ी रूडली कहा। अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो जाकर खुद चेक कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, युग ने जवाब दिया। उसने ध्रुव को आगे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया और उससे पहले ही कॉल कट कर दिया था। युग इस वक्त हॉस्पिटल में कृषा के कमरे के आगे बैठा हुआ था। पिछली बार कृषा ने जो भी कहा था उसकी वजह से वो गुस्सा था। भले ही युग कृषा के सामने ना जा रहा हो लेकिन उसे उसकी परवाह थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल से एक मिनट के लिए भी नहीं हटा था। वहीं कृषा के पास अंदर अर्जुन बैठा हुआ था। कृषा भी मायूस नजर आ रही थी। ऊपर से युग जिस तरह से बाहर बैठा था उसे साफ था कि उन दोनों के बीच किसी तरह की लड़ाई या बहस हुई थी। बताओगी क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? शादी को इतने साल हो गए हैं फिर भी दोनों बिल्कुल नहीं बदले हो। ओके ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं है पर वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। अंदर नहीं आ रहा लेकिन बाहर बैठा हुआ है, उसकी वजह से बाकी स्टाफ और लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। मेरी गलती है जो मैंने अनजाने में उसे ये कह दिया कि उसके लिए रिश्ते और मुझसे ज्यादा उसका मकसद और माफिया की पोजीशन मायने रखती है, कृषा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। हाँ तो इसमें गलत क्या कहा? अर्जुन भौहें उठकाकर बोला। अपने मकसद और सो कॉल्ड पोजीशन के लिए वो हमेशा तुम्हारी जान खतरे में डालता आया है, अब उसे सच हजम नहीं हो रहा तो उसकी गलती है। ऐसा नहीं है भाई, वो सच में मुझे बहुत प्यार करता है और उसने मेरे लिए खुद को बहुत बदला है, ना सिर्फ मेरे लिए हमारे बच्चों के लिए भी युग बहुत कंसर्न रहता है, कृषा बोली। ध्रुव की साइड लेने के चक्कर में कृषा ने भले ही अनजाने में वो सब बातें बोलती थी पर वो खुद जानती थी कि युग उससे कितना प्यार करता है। उसने उसके हर बचपने जिद को दिल से एक्सेप्ट किया था।
हाँ दिख रहा है कितना कंसर्न रहता है, अपने बेटे को अपनी तरह माफिया किंग बनाना चाहता है। कौन सा बाप अपने बेटे के लिए ऐसा फ्यूचर डिसाइड करता है? और तुम्हारी बेटी, उसके बारे में अब सबको पता चल रहा है जबकि वो 8 साल की हो गई है। देखना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब युग अपने मतलब के लिए याशिका भी इस्तेमाल करेगा, अर्जुन ने कड़वाहट से कहा। युग कृषा से बात करने के लिए अंदर आ रहा था तभी उसके कानों में अर्जुन ही कुछ बातें पड़ी जिसे सुनते ही युग के चेहरे के भाव बेहद सर्द हो गए थे। उसने कभी कृषा का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर अपने बच्चों का इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। ऊपर से अर्जुन याशी का नाम ले रहा था।